नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अत्रापि बहुरिचैर्गीतम् श्लोक 38 है अत्रापि बहुरिचैर्गीतम् श्रृणु मे सुरसत्तमा सत्यमोमिति जप्रुक्तम् जन्नित्याहानृतं हितात् सत्यं पुष्पफलं विद्यात् आत्मा वृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्नो स्यात् अनृतं मूलमात्मनः तद्यथा वृक्ष उन्मूलः सुस्यद् उद्वर्तते चिरात् एवं नष्टानृतः सद्यः आत्मा सुस्येन संशयः परागरिक्तमपूर्णं वा अक्षरं यत्तदोमिति यत्किञ्चिदोमिति ब्रूयात् तेन ऋच्येत वैपुमान् भिक्षवे सर्वमोम् कुर्वन् नालं कामेन चात्मने अथैतत् पूर्णमभ्यात्मा यच्च नित्यनृतं वचः सर्वं नित्यनृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्तिः स्वसन्मृतः स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याद् जुगुप्सितां आज आवृत्ति नहीं करेंगे सीधा प्रारंभ करते हैं देर हो गई कीर्तन को थोड़ा कम लाउड कराइए भगवान कथा सुन रहे हैं आज भगवान वामन देव बैठे हैं कथा सुनने के लिए बलि महाराज बोल रहे हैं शुक्राचार्य बोल रहे हैं दोनों के संवाद को भगवान सुन रहे हैं तो कीर्तन के आवाज को डाउन करना चाहिए नहीं तो अपराध होगा अत्रापि बहुरिचैर् गीतम् श्रृणु मे सुरसत्तमा सत्यम ओमिति जत प्रोक्तम जन्यत्याह नृतम हित हे हे असु सत्तम अत्र अपि बहु ऋचः गीतं मे शृणु ओम इति यत् प्रोक्तं तत् सत्यं न इति यत् आह तत् अनृतम्। तो विश्व के सबसे बड़े विद्वान बोल रहे हैं, भगवद गीता में भगवान ने कहा है कवि ना उसना कवि, कवि का अर्थ होता है विद्वान। मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ। शुक्राचार्य भगवान की एक विभूति हैं। तो वे बलि महाराज को व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं किस स्थिति में क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य की नीति बहुत प्रसिद्ध नीति है। दो नीतियाँ भगवान के द्वारा उद्धृत हुई है, बृहस्पति नीति और शुक्र नीति। तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, दानवों के भी, तो देवताओं से ठीक अपोजिट। परंतु अपनी बुद्धि से, अपनी नीति से कभी कभी वे असुरों को भी विजयी बनाते रहते हैं। कभी कभी असुर दैत्य भी स्वर्ग के राजा हो जाते हैं। तो ऐसा विद्वान व्यक्ति बोल रहा है, बोलते बोलते शुक्राचार्य ने कहा कि देखो बलि, उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती है जिस दान को करने से अपनी जीविका ही विपत्ति में पड़ जाए। दान उसी दान की प्रशंसा होती है कि अपना काम धंधा ठीक से चलता रहे, पैसा आता रहे और दान भी दिया जाए। अगर काम धंधा बंद हो जाए, आमदनी बंद हो जाए, तो ऐसा दान प्रशंसा का काम नहीं होता है। धन को पांच भाग में बांट करके उपभोग करना चाहिए, पांच चीज में लगाना चाहिए। इतना कहकर जब इस प्रकार से शुक्राचार्य जी कहे बलि महाराज से, तो बलि महाराज कहे कि गुरुदेव ननु तरही प्रतिश्रुत्य न इति कथम अनृतम वाच्यम। मैं इस ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, फिर किस मुख से कहूँ कि नहीं दूंगा। इस तरह से अनृतम असत्य मैं कैसे बोल सकता हूँ। तब शुक्राचार्य वेदों से अपनी उक्ति का समर्थन कर रहे हैं कि सुनो हे असुर कुलभूषण, अत्रापि बहु ऋचैर गीतम। ऋग्वेद के बहुत से श्लोकों में, मंत्रों में अत्र अपि क्या सत्य है और क्या झूठ है, इस व्यवस्था को देने में ये श्लोक उद्धृत किए गए हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणगण इन श्लोकों को बताते हैं। सुनो में मुझसे सुनो, सत्य क्या है? तुम कहते हो कि मैं कैसे झूठ बोलूं? तो सत्यम ओम इति जत प्रोक्तम, जो ओम ओम ये ओंकार है जिसको जपते हैं हम लोग ओम, तो ओम का कई अर्थ होता है। यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं शुक्राचार्य की ओम इति जत प्रोक्तम, जो यह ओम कहा गया है इसका अर्थ है हाँ दस्यामि दूंगा, अंगीकार कर लेना किसी की याचना को, इसको यह व्यक्त करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है तो उसको कहते हैं ओम। तो ओम इति यत् प्रोक्तम तत् सत्यम, किसी याचक की मांग को पूरा किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है, तो इसको सत्य कहा गया। सत्य का मतलब है दान देना, स्वीकार कर लेना। और न इति आह अनृतम ही तत्, और ओम के बदले, ओम के ठीक विपरीत न जो शब्द है, न दास्यामि मैं नहीं दूंगा, यह जो शब्द है यह अनृतम यह झूठा है। न देना यह जीवन में बहुत बड़ा असत्य है। तो सुनो, वेद में क्या व्यवस्था दी गई है सत्य और अमृत के विषय में। बहुत से ऋग्वेदी ब्राह्मणों ने इसको गाया है, बताया है कि ओम दस्यामि मैं दूंगा, यह है सत्य, और न इति तप अनृतम, नहीं दूंगा, यह जो शब्द मुख से निकलता है किसी के तो यह असत्य शब्द, ये झूठा है। तो ओम की बहुत प्रशंसा की गई, हाँ दूंगा इसकी बहुत प्रशंसा है, नहीं दूंगा इसकी वेद में बहुत निंदा है। परंतु कभी कभी विशेष समय पर, विशेष परिस्थिति में, विशेष पात्र के अनुसार कहना पड़ता है व्यक्ति को ना, नहीं दूंगा। तो किस स्थिति में ना कहना चाहिए, वृत्ति आदि संकट में पड़ जाए, उसको ये बता रहे हैं। और सत्यम पुष्प फलम विद्यात, सत्यम पुष्प फलम विद्यात आत्मवृक्ष से गीयते, सत्य बोलना हाँ ठीक है मैं दूंगा, यह बोलना यही है सदेह रूपी वृक्ष का पुष्प और फल। देह मनुष्य धारण किया, जीवात्मा धारण किया है, तो इसके मुख से निकलना चाहिए हाँ ठीक ठीक, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। यह जो है इस शरीर का फूल है और फल है। जो व्यक्ति कभी देने की नहीं सोचा उसका जीवन निष्फल हो गया, इसमें फल लगा ही नहीं। ऐसा वृक्ष जिसमें फूल भी नहीं लगा और फल भी नहीं लगा। तो फूल क्या है, हाँ दूंगा, मीठा वचन बोलना, आश्वासन देना, ठीक है मैं दूंगा, यह है पुष्प, और दे देना फल है। ये फूल है फल है। इस आत्मवृक्ष से कैसे कहते हैं, गीयते श्रुत्या गीयते, श्रुति वेद शास्त्र इसको गाता है, बोलता है कि हाँ मैं दूंगा, यह कहना इस शरीर रूपी वृक्ष का फल है। लेकिन यह जो हाँ है सत्य है, तत्तु सत्यम ईषद अनृतम बिना न सिद्ध्यति इति आशय न है। अभी इस श्लोक में सत्यम पुष्प फलम विद्याति, इस श्लोक में शुक्राचार्य समझाते हैं कि हाँ मैं दूंगा, ये जो सत्य है बिना अनृत के, थोड़ा सा झूठ के बिना ये नहीं चलता, झूठ बोलना ही पड़ता है मनुष्य को। और जो व्यक्ति सदा केवल सत्य बोलता है, सदा सत्य बोलता है और कहता रहता हाँ हाँ हमारे पास इतना धन है, कोई भी आवे मांगे, तो कितना समय लगेगा उसके धन को नष्ट होने में। दुनिया भर के भिखमंगे आकर के मांग कर ले जाएंगे, है ना। ये पता लगे कि व्यक्ति बिल्कुल सत्य बोल रहा है और उसके पास इतना धन है, तो एक दिन में ही सारा धन का आवंटन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको श्रीपद शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि सत्यम पुष्प फलम विद्यात आत्मवृक्ष से गीयते, वृक्षे अजीवति तन्न स्याद अनृतम मूलमात्मन। इस शरीर की उपमा एक वृक्ष से दी गई है। तो वृक्ष कब तक टिकता है, जब तक उसकी जड़ें, उसका मूल अनावृत रहता है, आवृत नहीं रहता है। मिट्टी चारों तरफ से रहती है, चबूतरा जैसा रहता है, या उसकी जड़ें नीचे गई हैं। लेकिन अगर उसकी जड़ को उखाड़ दिया जाए, यथा वृक्ष उन्मूल, यथा वृक्ष उन्मूल, जब उत्पाटित मूल हो जाता है वृक्ष, तो वह गिर जाता है और सूख जाता है। उद्वर्तते पतति शुष्यति शुष्कम भवत, सूख जाता है, गिर जाता है और सूख जाता है। इसी तरह से एवं नष्टा नृत सद्य उपमान शुष्य न संशय, इसी तरह से जिसका झूठ बोलना एकदम नष्ट हो गया है, तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है, वो आत्मा शुष्य न संशय, वो सुख जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमेशा सत्य ही नहीं बोलना चाहिए, ये शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं। वास्तव में ये बहुत आवश्यक है। वैसे आजकल के मनुष्यों को तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि अब उनको क्या कहा जाए कैसे झूठ कभी कभी बोलना चाहिए। थोड़ा सा श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि तत्तु सत्यम ईषत अनृतम बिना न सिद्ध्यति, सत्यम पुरुष फलम विद्या जानिया, शरीर रहेगा तभी ना सत्य बोलेंगे चाहे झूठ बोलेंगे, मर जाएंगे तो क्या बोलेंगे मुझसे, पहले जीना चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं किसी प्रकार से शरीर को जीवित रखना चाहिए, पोषना चाहिए। शरीर जीवित रखने का मतलब है धन धान्य बना रहे, पैसा को छिपा करके रखना चाहिए, कोई मांगने आवे तो दे, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में कह दे कि इस समय तो बिल्कुल घाटे में चल रहा है, कोई आमदनी नहीं है, सीधा नहीं, मैं इसमें दुख में हूँ, ऐसा कहने से धन बचा रहता है। तो आगे वो बताते हैं, जैसे वृक्ष उत्पाटित मूल उसका उखाड़ दिया जाए तो वो गिर जाता है, सूख जाता है, इसी तरह से जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है अर्थात सदा देने पर ही उतारू रहता है तो आत्मा सुसिद्ध न संशय, वो तुरंत सूख जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में कोई संशय नहीं है। कोई आदमी अपने बैंक का रुपया या तिजोरी में या घर में जो भी रखा है और लिख दे कि हमारे पास इतना है, अब कोई भी व्यक्ति आवे या अथवा न भी कहे पर दूसरा भीख मंगा, दूसरा दान लेने वाला जाकर कहेगा कि वो तो इतना दिया है, तो दूसरे भी आएंगे। अरे कृष्ण, ये बामन देव आ गए। श्रीपाद शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आत्मा सुसे न संशय, कौन नष्ट हो जाता है सुख जाता है, नष्टा नृत, जिसका अनृत नष्ट हो गया है वो व्यक्ति सुख जाता है। नष्टा नृत मतलब जिसका झूठ बोलना एकदम बंद हो गया है, तब तो ठीक है दिया करे हमेशा और एक पैसा भी न रखे, न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा न सोने के लिए रहने के लिए घर तक रह जाएगा तो सूखेगा नहीं तो क्या होगा, नष्टा नृत। इसलिए हे बलि, वेद कहता है किसी किसी परिस्थिति में छिपाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए अपना धन अपना ब्यौरा सब कुछ, कह देना चाहिए नहीं दूंगा या थोड़ा दूंगा। धन को हमेशा बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, इस श्लोक का भाव ये है, क्योंकि अनृतम मूलमात्मन, यह शरीर, इस शरीर का मूल क्या है, अनृत झूठ, झूठ बोलना असत्य बोलना ही इस शरीर का मूल है, उसी पर टीका हुआ। वैसे भी शरीर झूठा है, यह है क्या, पांच तत्वों का मिश्रण है, ब्रह्मा जी ने इसको गढ़ दिया है साई जो ग्रह सब, और इसमें आत्मा को डाल दिया गया, नहीं तो अपने आप में तो ये झूठा है, जीवित नहीं है, जीवन शक्ति जो है वो आत्मा की है। जैसे किसी घर में बिजली जल रही है तो उस घर का लाइट नहीं है, वो बिजली का लाइट है, बिजली प्रकाश देती है तो घर उजाला दिखता है, लेकिन अगर बिजली न रहे तो घर अंधकार से पूर्ण रहेगा। ये जड़ शरीर है, ये स्वयं ही झूठ पर टिका हुआ है, अतः इस झूठे शरीर को पोषने के लिए झूठ का सहारा लेना चाहिए। आगे श्लोक 41वें श्लोक में कहते हैं, पराग रिक्तम अपूर्णम वा, तस्मात अनिर्तम न बदे दयता इति अनेना। ये जो शब्द है ओम, ये बहुत खतरनाक है। ओम का मतलब हाँ हाँ ठीक है ठीक है दूंगा, ये बहुत खतरनाक है। इसको कहते हैं पराग रिक्तम अपूर्णम वा। पराग पहले तो सर्वथा सत्य वचने न देहो अपि न निर्वहेत इति। सदा सत्य बोलने लगे मनुष्य तो उसके देह का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए दूंगा इस शब्द में अनेक दोष बता रहे हैं और नहीं दूंगा इसमें बहुत गुण बता रहे हैं, उसको बताते हैं। पराग रिक्तम अपूर्णम वा अक्षरम जत तद ओम इति। ओम ठीक है मैं दूंगा, यह जो अक्षर है जो शब्द है ये पराग रिक्तम अपूर्णम। पराग है, पराग का अर्थ होता है ये धन को दूर कर देता है। कोई अपने मुख से बोले ओम ठीक है मैं दूंगा तो दूंगा तो अब धन जाने का रास्ता चालू हो जाता है, तो पराग कहता है ये धन को दूर करता है। और रिक्तम और यह खाली करने वाला है, खाली कर देता है आदमी धन को दूर करता है, मनुष्य को खाली कर देता है धन से। अपूर्ण उसको पूर्ण नहीं रहने देता है। एक शब्द की ही व्याख्या है जत किंचित ओमिति बुरिया तेन रिचेत वाय पुमान। जो भी आवे जिस परिस्थिति में अपना रसीद लेकर के चंदा मांगने या कुछ भी करने या इधर ये जरूरत उधर ये जरूरत और कहा करे ठीक है जत किंचित ओम ब्रियात, जो भी जितना मांगे और कहे ओम ठीक है तेना रिचेत वाय पुमान, तो बिल्कुल खाली हो जाता है। क्योंकि लेने वाले की कमी नहीं है इस दुनिया में, है ना। यदि पता लग जाए कि यहाँ पर फ्री पैसा बट रहा है तो रिचेत वैपमान। और उस पर भी भिक्षवे सर्वमोम कुर्वन, भिक्षुक को भीख मांगने वाले को यदि कोई कहे हमेशा ओम ठीक है तब तो अपने लिए भी कुछ नहीं बचेगा। नालम कामे न चात मने, अपने लिए भी कुछ भी पर्याप्त नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा और भीख मांगे की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। वो जितना मांगता है उतना दे दीजिए तो उसकी भी इच्छा पूरी नहीं होती और अपना जो गया हो भोजन आदि गया हो तो गया है। इसलिए भिक्षु को तो भूल करके नहीं कहना चाहिए कि ठीक है तुम मांगो कितना चाहिए। तो ये तो एक भिक्षुक है, एक ब्राह्मण भीख मांगने के लिए आया है तो इसको क्यों कह दिए कि तुम जो इच्छा हो मांगो, ये तो सब कुछ ले लेंगे। पराग का अर्थ पराम अंचति दूरे अर्थम गृहित्वा ब्रजति इति पराग रिक्तम इति श्रुति पदस्य व्याख्यानम अपूर्णम वैति तत्तस्मात् अर्थिने जत किंचित ओम ब्रुवन तेना रिचेत न्यूनो भवति किंच भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन दास्यामि इति अंगी कुर्वन आत्मने कामेन नालम प्रयाप्त न भवति तस्य भोगो न सिद्ध्यति इति अर्थ। अतः सब समय हाँ दूंगा ये नहीं कहना चाहिए। और नहीं दूंगा इस शब्द में गुण बता रहे हैं अथैतत् पूर्णम अभ्यात्मम जच्च नित्यम नृतम वचः। हे बलि सुनो, ये जो न शब्द है वेद कहता है न, कोई कुछ मांगने आया तो अगर ये कह दिया जाए नहीं इस समय हमारा दिन ठीक नहीं है, इस समय बड़े बड़े दुख में हूँ, इस समय बड़े दुख में हूँ तो ये नहीं कह रहा है कि तब तो आज मत आइए 10 दिन के बाद आइए, इसका मतलब ये नहीं है। अब आज जो नहीं हो गया तो नहीं ही हो गया। तो ये शब्द बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत गुण है। तो बताते हैं कि न इति जद वचः अनृतम वचः तत्पूर्णम, यह मनुष्य को पूर्ण रखता है। धन का व्यय ही नहीं होगा तो पूरा भरा हुआ रहेगा नहीं, है ना? नहीं कर देना, बताना नहीं किसी को, न सरकार को बताना, न किसी संस्था को बताना, न अपने घर वालों को भी बताना, कोई बतावे ही नहीं, और कोई मांगे तो पहनना है हमारे पास नहीं है। तो ये न शब्द जो है उसको पूर्ण रखता है, धन का व्यय होने नहीं देता है, खर्च होने नहीं देता है, तो आदमी बिल्कुल भरा रहा पूर्णम। और अभियात्मों का अर्थ है कि अपने अभिमुख लोगों का अटेंशन करता है। अगर कोई इस बात का प्रचार करके हमारे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो दूसरे लोग उसको धन देते हैं कंपैशन करके, सिंपैथी से, कि भाई इसको मदद करनी चाहिए, देना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं है, तो दूसरे का धन अभिमुख, इसके अभिमुख होता है, नहीं इसको नहीं है तो दिया जाए। ना बोलने से नहीं दूंगा, इसमें कई गुण है। एक तो अपने पास जो है वो बना ही रहता है, और दूसरे से भी मिलने की आशा रहती है। तो ये पूर्णम अभ्यात्मम जच न इति नर्दम बच। तो बलि महाराज ने कहा तब तो गुरु जी सब समय नहीं दूंगा नहीं है यही कहना ठीक है ना? तो शुक्राचार्य कहते हैं सब समय सभी परिस्थिति में जो नहीं बोलता है नहीं दूंगा वो तो जीवित ही मरा हुआ है। सर्वम नित्य नृतम बुरियात सद दुष्कृति श्वसन मृत। सब समय केवल ये कहता रहता है कि नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, तो वह श्वसन मृत, वो मरा हुआ है, सांस भर ले रहा है, उसमें जीवन नहीं है। हर एक समय नहीं बोलना चाहिए ऐसा कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा, किसी खास स्थिति में नहीं करना चाहिए। वास्तव में वे सबसे बड़े विद्वान हैं, तो वेद के अनुसार बोल रहे हैं। सब समय हाँ भी नहीं करना चाहिए और सब समय न भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वेद कहता है कि सत्य और अनृतम अनृत मिथुनी करोति, इन दोनों को जोड़ी में रखे और कभी सत्य बोले, कभी कहे कि हाँ ठीक है, और कभी कहे नहीं नहीं है मेरे पास, इस तरह से दोनों को मिला करके मनुष्य को जीना चाहिए। हर एक समय हाँ दूंगा ये नहीं करना चाहिए, और हर एक समय नहीं दूंगा नहीं है ये भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा आदमी तो मर जाता है। दुष्कृति, उसकी पापी का कीर्ति फैलती है दुनिया में, अरे एक नंबर का कंजूस है साला, इस तरह से कुछ नहीं देता है, इस तरह से लोग गाली देते हैं उसको, अरे उसके पास मांगने गया था अभी राम राम कुछ भी नहीं दिया, तो उसकी अपकीर्ति फैलती है। इसी जीवन में मर जाता है, इतना ही अंतर है कि सांस लेकिन चलती रहती है, सांस चलती है पर मरा हुआ है, जिसकी कीर्ति वास्तव में, जिसकी अपकीर्ति संसार में फैलती है। कैसी कीर्ति? दुष्कीर्ति, दुष्टा कीर्ति, पापिका कीर्ति, वेद कहता है पापिका, बहुत मलिन कीर्ति। सब कीर्ति दो तरह की, एक तो सत्कीर्ति अच्छी कीर्ति फैलती है संसार में, और एक पापिका कीर्ति। तो पापिका कीर्ति में, दुष्ट कीर्ति में यह भी है कि धन होते हुए भी वो क्रिपल नंबर वन कंजूस, दूसरों को देने की बात तो दूर है, स्वयं भी नहीं भोगता है उस धन को, स्वयं भी नहीं भोग पाता। एक संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है, सबसे बड़ा दानी है कंजूस, साथ वो श्लोक में कहा गया। क्यों? क्योंकि कंजूस जब मरता है तो अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता है, उसका दान हो जाता है, और कंजूस नहीं है तो वो तो खाएगा पिएगा कुछ खर्च करेगा, वो पूरा दाता नहीं है, दिया तो कुछ दान दिया, लेकिन ये कंजूस महाराज तो पूरा पूरा दान करके चले जाते हैं, सबसे बड़े दानी है। श्रीमद् शुक्राचार्य मनुष्यों को जीने की कला सिखा रहे हैं। वास्तव में यह एक बहुत भारी विपत्ति थी बलि महाराज के लिए। मान लीजिए भगवान के बदले कोई दूसरा ब्राह्मण बैठा होता है तब क्या होता है? वो तो भगवान थे, उनको सब कुछ दे देना ही जीवन का सौभाग्य है, सब कुछ है। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति ऐसे ही ठग बैठा होता वहाँ और बात बना करके और नपवा लेता पूरे संसार को, तो बलि कितना घाटा में पड़ता। इसलिए गुरु का कर्तव्य था कि अपने शिष्य का हित करें। जो कुछ बोल रहे हैं तो वैदिक वाक्य उद्धृत कर रहे हैं, अपना विचार नहीं बोल रहे हैं शुक्राचार्य। वेद स्वतः प्रमाण है, भगवान की वाणी है, तो उसको उद्धृत कर रहे हैं, वेद ऐसा कहता है। तो आगे वो बता रहे हैं कि देखो किसी किसी स्थिति में असत्य बोल देना निंदनीय नहीं है, निंदनीय नहीं माना जाता है, उसकी निंदा नहीं होती। ये नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष परिस्थिति में झूठ बोलना धर्म है, धर्म नहीं है, लेकिन निंदनीय नहीं है, दोनों में अंतर है। तो कभी कभी भक्त पूछते हैं अच्छा तो इन विषयों में झूठ बोलना धर्म है? नहीं नहीं, धर्म नहीं है। जैसे बता रहे शुक्राचार्य जी कि किसी किसी स्थिति में सीधा झूठ बोल देना निंदनीय नहीं है। जैसे स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गोबरा भंगार्थे हिंसायाम नानृतम सैद जुगुप्सित। स्त्रीसु नर्म विवाहे च, स्त्रियों में झूठ बोलना निंदित नहीं, निंदनीय नहीं है। स्त्री को प्रोत्साहन दे करके उसे अपने वश में रखना चाहिए, वादा करके। यदि कोई व्यक्ति उनको न देने का वादा करे तो वो संतुष्ट नहीं रहेगी। खासकर पत्नी के लिए कहा जा रहा है, सभी स्त्रियों के लिए नहीं। यदि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कभी कभी झूठ भी बोले, ठीक है अगले महीने में ये दे दूंगा, वो दो दूंगा, ये दे दूंगा मंगा दूंगा, और झूठ बोलने से वो प्रसन्न रहे तो झूठ बोल करके भी प्रसन्न रखना चाहिए। अगर देने की शक्ति है तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं, झूठ बोल कर काम चला। स्त्री सु, स्त्रियों के बीच झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। ऐसे झूठ बोलना धर्म नहीं है, लेकिन कदाचित जरूरत पड़ जाए झूठ बोलने की तो बोला जा सकता है। क्योंकि स्त्री की बहुत मांग होती है, थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मांग होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक देश का खर्चा चलाना आसान है लेकिन पत्नी का खर्चा चलाना आसान नहीं है। खास करके विदेशी औरतों को व्हाइट एलिफेंट कहते थे। व्हाइट एलिफेंट बहुत बहुत मांगे होती हैं। भारत की नारियां तो अपने पति की सेवा करती हैं, देखा गया है, लेकिन विदेशी औरत वो सेवा कराने के लिए किसी को पति बनाती है। और जो भी हो, जनरल ये नियम है इस वेद का कि अगर कभी जरूरत पड़े और अपने पास शक्ति नहीं है परंतु स्त्री को खुश रखना है, बिना खुश रखे कैसे निर्वाह होगा? गृहस्थी जो है दो दो चक्के की गाड़ी है, और एक चक्का यदि टूट गया है या ठीक नहीं है तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। तो उसको प्रसन्न रखना चाहिए, उसको वस्तु देना, कपड़ा देना, भोजन देना, अलंकार देना और घर देना, ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन किसी परिस्थिति में यदि नहीं है तो झूठा वादा कर करके चलाना चाहिए, तब तक कोई बात नहीं। अगर कोई अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये तो पाप किया, धर्म किया, निंदा नहीं होता। नर्म विवाहे च, नर्मणी परिहास है, मजाक करने में, परिहास करने में कोई झूठ बोल दे तो इसको निंदनीय नहीं माना गया है। हंसी मजाक में झूठ बोल दे विवाह है चौ, और विवाह में विवाह में वर की प्रशंसा कर दे खूब, दुल्हा की प्रशंसा करे या कन्या की खूब प्रशंसा करे और उन दोनों का विवाह हो जाए तो ये यज्ञ के समान है, ठीक है, हो जाए विवाह, बाद में झगड़ा होता रहता है ये कह करके नहीं दिया है तो ये कह कर नहीं दिया है, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ना विवाह तो विवाह में सत्य बोलना, वर आदि की प्रशंसा करना ये निंदनीय नहीं है। किसी का विवाह करा देना एक यज्ञ कराने के समान माना गया है लोग, तो कभी कभी लोग ये जानते हैं कि ये लड़का कम पढ़ा लिखा है या इसकी इससे धन बहुत नहीं कमा रहा है तो नहीं विवाह करते हैं उसका। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस लड़के की प्रशंसा किया इधर उधर पूरा टोटल झूठ बोला तब भी ठीक है और विवाह हो जाए तो भगवान की कृपा से बाद में वो जिएंगे खाएंगे कमाएंगे। या कन्या की प्रशंसा करना किसी तरह से विवाह हो जाए, ये वेद कहता है, ये भगवान का उपदेश है, वृत्त्यर्थ है और वृत्ति के लिए जीविका के लिए जीने का जो साधन है, काम धंधा है, व्यापार है, कई तरह का है, अगर सत्य बोलने से वृत्ति में बाधा पड़ती है, काम धंधा की हानि होती है तो झूठ बोल करके अगर वो चले तो झूठ बोलकर काम चला लेना चाहिए, निंदनीय नहीं है। और प्राण संकट है और अपना प्राण संकट में पड़ जाए, मरने की नौबत आ जाए किसी तरह से और सत्य बोलने से मरने का निश्चय हो गया हो तो कोई भी झूठ बोल करके प्राण बचा लेना चाहिए। प्राण बच जाने के बाद आदमी धर्म करेगा चाहे जो भी करेगा, जीवित रहेगा तभी ना करेगा। विश्वामित्र जी एक बार कुत्ते का मांस खाए थे, उसकी जांघ खाए थे, जो मना है शास्त्र में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वे कहते हैं कि इसको खा करके यदि मैं जी जाऊंगा तो फिर मैं तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, और वही हुआ भी। उस समय जीने के लिए बहुत गर्हित भोजन किए लेकिन फिर भी उसको गर्हित नहीं माना गया। कोई व्यक्ति मान लीजिए एकदम मरुभूमि में पड़ गया है, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है और मरने की हालत है, तो उस समय अगर कोई मान लीजिए दे दिया किसी को किसी जीव का मांस, गाय का मांस छोड़ करके, अगर उसको खाने से उसका जीवन बच जाता है तो उसको खा लेगा और फिर खा करके जो पाप किया है उसको भस्म करेगा, भगवान का भजन करके तपस्या कर। तो जीवन चलाना बहुत जरूरी है, जीने का अधिकार सबको है, तो प्राण संकट में पड़ जाए, जीवन की हानि हो रही है तो उस समय कोई भी झूठ बोल करके प्राण बचा लेना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थ है, गौओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए असत्य बोलना निंदनीय नहीं है। जहाँ गौओं का हित होता हो, ब्राह्मणों का हित होता हो, वहाँ सत्य चल सकता है। हिंसायाम, किसी की हिंसा हो रही है, कोई किसी को मार रहा है और अगर झूठ बोलने से उसके जान बच जाए, अपने शरण में है तो उसे बचा लेना चाहिए, झूठी गवाही देकर के भी उसे बचा लेना चाहिए। यदि वो अपने शरण में है और वही व्यक्ति उसका रक्षक है तो इन सब परिस्थितियों में अनृतम जुगुप्सितम न स्यात्, झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। अतः बलि देखो तुम्हारी जीविका पर संकट है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम्हारी सेना है, तुम्हारे सैनिक हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं, राज्य हैं, जब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं रहेगा तो तुम कैसे जियोगे, कैसे सब काम चलेगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि तुम इस ब्राह्मण को थोड़ा दो, पूरा मत दो, ये तुम्हारे सब कुछ लेने के लिए आया। जब इस प्रकार शुक्राचार्य ने बलि महाराज को समझाया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः तुष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच वहितो गुरुम्। हे राजन्, एवं कुलाचार्येण भाषितः अवहितः बलिः क्षणं तुष्णीं भूत्वा गुरुम् उवाच। कौन व्यक्ति बोल रहा था बलि महाराज से? कुल गुरु, जो वंश परंपरा से गुरु हैं और दैत्यों का हित किए हैं, यहाँ तक कि बलि महाराज को उन्होंने पुनर्जीवन दिया था, जिलाया था, ऐसे गुरु बोल रहे हैं। वो भी शिष्य का हित करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति बोल रहे थे। अतः बलि महाराज क्षण तुस्लिम भूतवा कुछ देर बिल्कुल चुप रहे और अवहित एकाग्र चित से उनकी बातें सुने थे और सुन करके कुछ देर चुप रहे और इसके बाद बोले। जब बलि महाराज बोल रहे हैं तो गुरु भाव रख करके ही बोल रहे हैं। गुरुम उवाच यहाँ लिखा गया, शुक्राचार्य जी कहता अपने गुरु से बोले। देखिए, जीवन का एक है व्यवहारिक पक्ष और एक है पारमार्थिक पक्ष। श्री बलि महाराज परमार्थ में आरूढ़ हैं और गुरु महाराज उनका लौकिक हित करना चाहते हैं कि ऐसे धन को बचा कर रखो, रखो आगे भी दान करो, सबका कल्याण करो, लेकिन अपना काम धंधा, अपना पैसा धन ठीक से रखो। तो बलि महाराज जब विचार करने लगे, गुरु महाराज बोल रहे हैं, सबसे बड़े विद्वान बोल रहे हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे वंश के हितैषी हैं, क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? तो कुछ देर चुप रहे। यह है महान पुरुषों का चरित्र। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए गुरु जी कुछ कहे तो तुरंत झगड़ा करना चालू करें, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सोचना चाहिए और गंभीरता से। तो बलि महाराज बहुत गंभीरता से सोचे, विचार किए गुरु की बातों पर। इसके बाद वे कहते हैं, सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनां अर्थं कामं जसो वृत्ति योन बाधेत करिचित। ये कहते हैं, हे भगवान, भगवता त्वया प्रोक्तं सत्यं। सबसे पहले बलि महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य कहा, उचित कहा। ऐसा नहीं था कि अपने गुरु की बातों को काट रहे हैं। कहते हैं कि हे भगवान, त्वया प्रोक्तम, आपके द्वारा जो कुछ बोला गया सत्यम, आप ठीक बोले हैं। क्या है वो, क्या बोले हैं? बोले कि यो अर्थ कामादिकम न बाधेत स्वयं ही गृहमेधिनम धर्म इति। आपने गृहस्थों के उस धर्म का वर्णन किया जो धर्म अर्थ काम जस और वृत्ति को बाधित न करे। आपने सत्य कहा, धर्म का प्रवचन किया। कौन धर्म? यो अर्थम कामम जसो वृत्तिम न बाधे। पर गृहस्थों के उस धर्म का कर्तव्य का आपने वर्णन किया जिससे कि उसका धन बाधित न हो, धन बना रहे, काम इंद्रिय भोग बना रहे और जस भी बना रहे बड़ा बड़ा काम करने का, और उसकी आजीविका भी बाधित न हो, उस धर्म का आपने वर्णन किया। और वास्तविक बात है कि श्रीपाद शुक्राचार्य गृहस्थों के उस धर्म का वर्णन किए जो धर्म है पैसे को बिल्कुल खत्म न कर दे, बाधा न दे दे, उसमें धर्म होता रहे और इसके साथ साथ जीविका चलती रहे, घर द्वार मोटर गाड़ी या खान पान सब कुछ ठीक रहे, ये भी धर्म है वास्तव में। तो आपने उस धर्म की शिक्षा दिया, लेकिन गुरु महाराज आपके चरणों में मैं दुस्साहस कर रहा हूं, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ, प्रहलादी अपने को कहा। सचाहम वित्त लोभे न प्रत्यक्ष कथम द्विजम प्रतिश्रुत ददा मिति प्रहलादी कृतवो यथा। एक तरफ आप गृहस्थों के धर्म का वर्णन कर रहे हैं, व्यवहारिक धर्म का, लेकिन मैं प्रहलाद महाराज का शिष्य हूँ और उनका पौत्र हूँ। हमको इस जीवन में श्री प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया है भगवान के भक्ति की। तो आप जरा विचार कीजिए, आप हमारे तरफ देखिए, हम प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं और धन के लोभ से, धन बचाने के लिए इस ब्राह्मण को प्रतिश्रुति देकर के, प्रतिज्ञा देकर के कि मैं धन दूंगा और मैं फिर धन को बचा लूं, इसको धोखा दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। ठीक है, और गृहस्थों के लिए आपकी शिक्षा उपाध्याय हैं, आप बिल्कुल उचित बोले हैं, लेकिन मेरे लिए उचित नहीं है। मैं किसी भी हालत में अब झूठ नहीं बोल सकता। जिस मुख से मैं कहा कि मैं दूंगा और वही मैं निहोरा करके ब्राह्मण से कह रहा हूँ और मांगो और मांगो, और इस पर यह ब्राह्मण हमसे तीन पग भूमि मांगा, तो मैं अब उसे भी न दूं, ये नहीं हो सकता। हमारे सामने जीवन में अभी इसका कोई महत्व नहीं है कि मैं कैसे जीऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, जैसे चलना हो या न चलना हो, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ, मैं इस ब्राह्मण को दूंगा ही, मैं कभी असत्य मुख से नहीं निकाल सकता कि नहीं दूंगा। कथम प्रत्यक्ष, मैं कैसे निरा करूंगी, मैं कैसे इस मुख से कहूं कि नहीं दूंगा, ये हमसे नहीं हो सकता है। बहुत विचार करके बलि महाराज कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पोजीशन देखना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई आदमी गलत काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है और उसे मान लीजिए उसको पैसा मिल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे उसी को प्रमाण नहीं मान लेना चाहिए। जस्य प्रमाणम भृगव सांपराय पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। श्री बलि महाराज अपने जीवन में आदर्श मान रहे हैं श्री प्रहलाद महाराज को, उनकी शिक्षा को, और शुक्राचार्य उनके जीवन दाता हैं, सब कुछ किए हैं, स्वर्ग पर विजय दिए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन इस विषय में शुक्राचार्य को प्रमाण या आदर्श नहीं मान रहे हैं। सीधा कहते हैं कि मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ और मैं ऐसे नीच कर्म नहीं कर सकता कि मैं इस ब्राह्मण को कह दूं कि न ददामि, मैं नहीं दूंगा, न दास्यामि, ऐसा नहीं कर सकता धन के लोभ से। फिर कहते हैं गुरु महाराज, यह पृथ्वी कहती है, पृथ्वी एक देवी है और ये कभी कभी बोलती है। भागवत में पृथ्वी का गीत दिया गया है द्वादश स्कंद में। बलि महाराज कहते हैं, न ह्य सत्यात् परो अधर्म इति होवाच भूरियम इयम भू। गुरु महाराज, ये भू, ये पृथ्वी देवी कहती है कि असत्य से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं, झूठ बोल अधर्म नहीं, झूठ बोलने के बराबर कोई भी अधर्म नहीं है। असत्य बोल दे व्यक्ति और किसी को धोखा देने के लिए, दुख में डालने के लिए, बचाने के लिए अपने को झूठ बोले, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। नहीं असत्यात् परो अधर्म इति ह उवाच भू इयम। यह पृथ्वी बोलती है कि असत्य से बढ़ करके कोई दूसरा अधर्म नहीं है। सर्वम सोढ़मलम मन्ने रीते लिक परम नरम। पृथ्वी कहती है, मैं सब कुछ का भार सह सकती हूँ, बड़ा बड़ा हिमालय पर्वत या मेरु पर्वत, जो भी जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, अनेक प्राणी हैं, इनका वजन मैं आसानी से सह सकती हूँ। सर्वम सोढ़ुम अलम मन में, मेरे लिए पर्याप्त, मैं सब कुछ भार सह सकती हूँ, लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मैं नहीं सह सकती। अलीक परम, जो दुष्ट है, कपटी है, धोखा देने वाला और झूठ बोलने वाला, उसका भार मैं नहीं सह सकती, यह पृथ्वी कहती। झूठ बोलने वाला आदमी हिमालय से भी ज्यादा गरिष्ठ पृथ्वी को लगता है, इससे भी ज्यादा भारी लगता है। ये पृथ्वी का बोझा बढ़ाते हैं झूठ बोलने वाले लोग, किसी भी बात में बस झूठ बोलना। कुछ लोगों की तो एकदम जीवन की वो शैली, जीवन का अंग है, झूठ बोलते हैं। कोई विचार नहीं करते क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, लेकिन मैं झूठ बोलना, असत्य बोलना, दूसरों को संकट में डाल देना, धोखा में डाल देना। क्या वादा होते संसार में देखा गया है, नेशन और नेशन में भी, राष्ट्र राष्ट्र में संधि होती है और संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है और तुरंत झूठ बोलते हैं, तुरंत उस संधि के विपरीत काम करते हैं। तो इस प्रकार यह पृथ्वी कहती है, पृथ्वी तो सबके कर्मों का साक्षी है, व्यक्ति पृथ्वी पर ही रहता है। तो रीते अलिक परम नरम, नरम नरम का अर्थ मनुष्य, झूठ बोलने वाले मनुष्य का भार मैं नहीं सह पाती हूँ, मैं सबसे भारी गरिष्ठ लगता है, पृथ्वी का सिर दुखने लगता है, ये रसातल में गिरने की स्थिति में पड़ जाती है। तो बलि महाराज कहते हैं कि यह पृथ्वी कहती है। तो शुक्राचार्य ने कहा यदि तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो यदि तुम सत्य ही बोलते रहोगे और इस ब्राह्मण को देने की बात कर रहे हो अगर दोगे तो फिर अनेक संकट आ जाएंगे तुम्हारे पर। तो कहते हैं ना हम विभेम निर्यान, ना धन न्याद सुखारणवा, न स्थान चवनान मृत्योर जथा विप्र प्रलम्बना। क्या होगा, मुझे नरक में डाला जाएगा तो मैं नरक में नहीं डर, नरक में जाने से नहीं डरता हूँ। नरक में अनेक दुख हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन नरक में जाना मुझे मंजूर है, स्वीकार है, लेकिन ब्राह्मण को वंचित करना, इसको धोखा देना, देने की प्रतिज्ञा करके और कह देना कि नहीं दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। यदि हमारे पास धन न रहे, दरिद्रता आ जाए, वो दरिद्रता हमारे लिए शोभा की बात। ना हम विभेम निर्यान, ना धन्या जो सुखारणवा, मैं अधन्या धन धनहीनता से, दरिद्रता से नहीं डरता हूँ, और दुखों के समुद्र से भी मैं नहीं डरता हूँ, नरक जाने से नहीं डरता हूँ, स्थान छेवना हमारा स्थान छीन जाए, हमारा पद छीन जाए, इससे भी मुझे कोई डर नहीं है, यहाँ तक कि मृत्यु से भी मैं नहीं डरता हूँ। मर जाऊँगा ठीक है, लेकिन मैं ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा, ये सब चीज से मैं नहीं डरता हूँ। न अहम विभेमी, किसे निरयात, नरक से न विभेमी, अधन्यत न विभेमी, असुखारणवात अर्थात दुखारणवात न विभेमी, स्थान चवनात मृत्यु अपि न विभेमी, जथा विप्र प्रलम्बनात। एक ब्राह्मण को धोखा देने से, वंचित करने से जितना मैं डरता हूँ उतना मैं नरक आदि से नहीं डरता हूँ। बोले महाराज एक विश्व में सबसे मान्य व्यक्ति को जवाब दे रहे हैं, शुक्राचार्य के विचार का खंडन कर रहे हैं, जबकि शुक्राचार्य वेद से बोल रहे हैं, वेद शास्त्र से प्रवचन कर रहे हैं कि इस स्थिति में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज का ये जो विचार है वास्तव में ये अत्यंत सराहनीय है। अहम विप्र प्रलम्बनात जथा विभेमे तथा निरयात न, असुखारणवात न, अधन्यात न, स्थान चवनात न, मृत्योरपि न। जब भगवान ने कहा कि अगर तुम नहीं जवाब दोगे, अगर इनको ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं दूंगा तो बहुत दोष आएंगे तुम्हारे जीवन में। एक तो गरीबी पहले आएगी, सब कुछ छीन लिया जाएगा, रहने के लिए एक इंच भूमि भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है तुम्हारा धन आदि सब उसके अंदर ही ले लिया जाएगा, कैसे जियोगे। सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्ति ससे कथम, तब बलि महाराज इसका जवाब दिए हैं, कुछ भी हो जाए। और आगे वे कहते हैं किंच जज्जद जद जद हास्यति लोकेस्मिन् संपरे तम धनाधिकम तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तुस्येन तेन चेत। गुरु महाराज, यह तो संसार में दृष्ट सत्य है, सब देखते हैं कि जब व्यक्ति संसार में मर जाता है, जिसको संपरेतम कहते हैं, मर जाता है, तो जो भी धन आदि उसके होते हैं ममतास्पद, जो भी धन आदि, जैसे धन, घर, कार, मोटरसाइकिल या पत्नी, भाई, जो कुछ भी धन आदि रहता है, उस मरे हुए व्यक्ति को सब छोड़ देता है, कोई नहीं साथ जाता है। जद जद हास्यति लोकेस्मिन् संपरेतम धनाधिकम्, ये तो देखा हुआ सत्य है ना। जब एक व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसके साथ एक पैसा भी नहीं जाता है, धन आदि उसको छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं जाता है। जब तक वो जीवित है तो उसके नाम से कितना खेत रहता है, कितनी फैक्ट्रियां रहती हैं, दुकान रहती है, और कितने लोग उसके अपने सब संबंधी भी रहते हैं उसके नाम से। अच्छा होता है ना, रजिस्ट्रेशन भी होता है विवाह में, ये इसकी पत्नी है, ये है वो। लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो सब छोड़ देते हैं। जो जीवित हैं वो तो छोड़ ही देते हैं, जो जड़ पदार्थ है उनके विषय में भी बलि महाराज कहते हैं कि ये सब उसको छोड़ देते हैं। पैसा उसके पास नहीं जाता है, कार नहीं जाती है, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं, घर नहीं, बेड नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ जाता है। तो क्यों नहीं जीवित अवस्था में ही किसी को दे करके और पुण्य कमाया जाए, जबकि ये छूट ही जाएंगे, है ना। मरने पर तो सब छूट ही जाएंगे, तो बेटर है कि जीवित अवस्था में दान करके और पुण्य कमाया जाए, दूसरे का हित किया जाए, अंततः तो छूटने ही वाले हैं। जब छोड़ ही देंगे सब, तो क्या इनके ममता में इतना पड़ना है, वो भी कह करके कि दूंगा और झूठ बोल दिया जाए कि नहीं दूंगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। जब जब धास्यति लोकेस्मिन् संपरेतम धनादिकम्, ये धन आदि उसको छोड़ देते हैं। धन आदि से तात्पर्य है रुपया, पैसा, जो जहां रहता है वहीं रह जाता है। एक श्लोक में कहा गया है कि जब व्यक्ति मरता है तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। श्लोक में कहा है जब व्यक्ति मर जाता है तो कौन कहाँ छूट जाते हैं, धनानि भूमौ, धन आदि भूमि में रह जाते हैं। पहले लोग भूमि में धन गाड़ करके रखते थे, सोना, हीरा या चांदी आदि, तब तो धनानि बैंके, ये कहा गया धन आदि सब बैंक में छूटे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और पशु सब गोष्ठ में, गोशाला में या पशुशाला में छूट जाते। इस समय ये जो कार है, ये मोटरसाइकिल है, इसमें भी पशु लगे हैं, कई घोड़े होते हैं, हॉर्स पावर, तो ये सब पार्के, ये सब पार्क में छूट जाते हैं, पार्किंग में छूट जाते हैं। क्या कोई भी मोटरसाइकिल जाएगा किसी मरने वाले के साथ, अभी नया नया मॉडल का खरीदा हो, लेकिन मरा तो बस सोचे कहते हैं छोटे। कोई पता भी नहीं लगा सकता है कि वो जीवात्मा गया कहाँ, कहाँ गया, कोई एड्रेस रहता तब ना उसके नाम का कुछ कार या मोटरसाइकिल या कुछ भी, उसका जूता पैंट भेज दिया जाता कि वहाँ यूज करे, मुझे पता ही नहीं रहता, सब कुछ छोड़ जाता। और भार्या गृह द्वारी, और अपनी पत्नी जिसका वो भरण किया है, पालन किया है, वो उसको छोड़ देती है। गृह द्वारी कहाँ पर, कहाँ तक जाती है उसके साथ, घर के द्वार तक, घर के बाहर जाना उसके लिए मना किया जाता है, तुम मत जाओ। जना है श्मशान, और उसके अपने जान, भाई, बंधु, और जो होते हैं कहाँ तक जाते हैं, श्मशान तक। देह कहाँ तक उसके साथ जाता है, देह तो खैर यही छूट गया, लेकिन देह चिताया, देह चिता पर वहां तक साथ देता है। कर्मानुगो गच्छत जीव एक, जीव को अकेले जाना पड़ता है, उसके साथ जाता है कुछ, क्या जाता है, कर्म। कर्म जो किया है अच्छा बुरा वही साथ में जाएगा और उसके अनुसार उसकी सदगति या दुर्गति जो भी होनी है होता है। तो इस तरह से मरे हुए व्यक्ति को बलि महाराज कहते हैं ये धन आदि सब छोड़ देते हैं। तस् त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तु से न ते न चेत, बलि महाराज के कहने का आशय यह है कि जब सब कुछ छोड़ ही देंगे, धन आदि सब उस आत्मा को छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं जाते हैं, तो सबसे बेटर यह है कि जीवित अवस्था में ही वह इन वस्तुओं को छोड़ दे, और छोड़ क्या दे, दूसरों को दे दे। आखिर छूट ही जाएंगे, तो छूटेंगे तो पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा, दान का जो फल होता है वो नहीं मिलेगा, ऐसे ही बेकार चला गया। तो अतः दे करके आत्मा मरे तो अच्छा है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं ठीक है, मैं देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बलि ठीक है दो, लेकिन अर्धम दे, आधा दो, अपने लिए कुछ रखो, जब तक जियोगे तब तक के लिए तो रखो आधा। ठीक है मरने के बाद सब छूट जाता है, लेकिन जब तक जीवन है तो थोड़ा रखना चाहिए ना, तो कुछ रख लो, आधा रख लो, आधा इस ब्राह्मण को दे दो। तब बलि महाराज कहते हैं तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तुस्य न तेन चेत, यदि मैं इस ब्राह्मण को कुछ धन देता हूँ और उस धन से यह ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ तो उस आधा दान देने से लाभ क्या हुआ, क्या फल हुआ। हमने इसको धन भी दिया और रोते हुए जाए कि बलि हमको कह करके नहीं दिया। मान लीजिए किसी को कुछ पैसा दिया जो मांगा कि हमको 100 रुपया दे दीजिए, और कोई आदमी उसको 20 रुपया दिया तो पूरे रास्ते में 80 रुपये के लिए रोता हुआ जाएगा कि बेकार। तो देने से भी क्या फायदा, जब ये ब्राह्मण संतुष्ट ही नहीं हुआ तो उस देने से भी क्या फायदा हुआ। निमित्त का अर्थ फल भी होता है, क्या फल हुआ उसमें, कुछ नहीं। अतः ये जितना चाहता है और हमारे पास शक्ति है तो उतना दूंगा, मैं इसको पूरा दूंगा, इसका मन भर दूंगा। गुरु महाराज जब किसी को खिलाने चले तो उसे भर पेट खिलाना चाहिए, भर पेट खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं कि निमंत्रण भी दिए बुलाए भी और थोड़ा थोड़ा चावल एक एक पूरी दे कर कर कह दिए होगा, ये क्या खिलाना है। खिलाने चले तो मन भर करके खिला, जब देने ही चले तो इस ब्राह्मण का मन भर देंगे, इसे संतुष्ट कर देंगे, कम नहीं देंगे, आधा नहीं देंगे। बलि महाराज को डांटते हुए शुक्राचार्य कहते हैं तो क्या इस तरह का दान कोई किया है कि अपना सब कुछ दे दिए, दे दे, अपने पास कुछ भी ना रखे। तुम बहुत बड़ा विद्वान बन रहे हो, मैं तुम्हारे हित के लिए सिखा रहा हूँ और तुम ये कहते हो ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, तो कोई ऐसा किया है। बलि महाराज कहते हैं गुरु महाराज अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर तक दे दिया दूसरे प्राणी के हित के लिए, अभी तो मैं धन दे रहा हूँ ना। तो श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधु दुष्ट जादु दुस्त्यजा सुभि दध्यं शिवि प्रवृत्त को विकल्प धरा दे। दधीची मुनि शिवि महाराज ऐसे हुए जिन्होंने दूसरे प्राणियों के हित के लिए, देवताओं का हित करने के लिए दधीची जी ने अपने शरीर की अस्थि दान दे दिया, शरीर दान दे दिया, और शिवि महाराज अपने शरीर के मांस को काट कर एक शरणागत कबूतर की रक्षा के लिए बाज को दे दिए। दूसरे प्राणियों का हित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये लोग अपने शरीर तक का दान दे दिए, तो को विकल्पो धरा देशो। तो फिर जमीन आदि के विषय में क्या सोचना है कि दो ना दो, क्या विचार करना है, सोचने की बात ही नहीं है, तो दूंगा ही। वे लोग अहंतास्पद देह तक को दे दिए, जो इतना प्रिय देह है, इसको दधीची मुनि ने दे दिया देवताओं की रक्षा के लिए। वृत्रासुर के कारण देवता लोग बड़े संकट में थे। दधीची मुनि के हड्डियों से अस्त्र बनेगा, उससे वृत्रासुर मारा जाएगा, ये भगवान ने कहा था देवताओं को। और भगवान ने कहा भी कि आप जाइए मांगने के लिए, वो दे देंगे। देवता लोग गए दधीची मुनि के पास और उन्हें सहर्ष अपना देह दे दिया। देवता लोग उसको शरीर को काटे, काट कर गढ़ करके उसे अस्त्र बनाए, अपना देह दे दिया देवताओं के हित के लिए। शिवी महाराज एक कबूतर की रक्षा के लिए, जो उनके शरण में गोद में आकर के गिर गया था, उनकी परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव और इंद्र आए थे, और बाज बने हुए एक देवता थे उसमें से कोई। तो बाज अपने शिकार को, कबूतर को खदरते हुए चला। वो कबूतर डरा हुआ आकर के महाराज शिवी के गोद में गिर गया। शिवी महाराज जदुवंश में जन्म लिए थे, गोद में गिर गया। तो देखे उसको सहलाने लगे, तब तक बाज पक्षी आया और कहा कि महाराज यह मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, इसे आप छोड़िए, मैं इसको खाऊंगा। शिवी महाराज जो करुणा की मूर्ति थे, उन्होंने कहा नहीं, तुमको भोजन चाहिए ना, तो इस कबूतर के वजन के बराबर मांस तुमको दे दिया जाएगा खाने के लिए, तुम खा लो, लेकिन इसको मत खाओ, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत प्रकार का तर्क किया कि महाराज ईश्वर के द्वारा मेरा ये प्राप्य भोजन है, मैं इसका पीछा किया हूँ, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, आप इसे छोड़िए। अंत में वो नहीं छोड़ रहे थे, तो उसने कहा कि मैं मांस खाऊंगा इसके बराबर, लेकिन आपका मांस खाऊंगा। तो बलि महाराज श्री महाराज स्वीकार करो, ठीक है। तो उस कबूतर को एक पलड़े पर रखा गया तराजू के, और एक पलड़े पर श्री महाराज अपने पैर के नीचे का मांस, पिंडली का मांस, जानू के घुटने के नीचे, इसको काटे और चढ़ाए। फिर भी कबूतर भारी रहा, वो तो उनकी परीक्षा ले जा रहे थे। उसके बाद जांघ को काटे, दाहिने हाथ से काट रहे, और फिर इस पैर के मांस को, इसके मांस को काटे, बहुत ज़्यादा काटे, लेकिन फिर भी कबूतर का वजन भारी था। तो महाराज शिवी अब पलड़े पर स्वयं ही अपने को रख दिए, चढ़ गए, अपने को बैठा लिए, ठीक है मुझको खा जाओ। लेकिन जब ही वे पलड़े पर चढ़े, तब कबूतर हल्का हो गया, बहुत भारी हो गए, उस समय फूलों की वर्षा होने लगी, धन्यवाद देने लगे देवता लोग, और इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए कि महाराज हम आपके दया की परीक्षा ले रहे थे कि आप कितने शरणागत वत्सल हैं। इस प्रकार शिवी महाराज का जस फैला, और आज बलि महाराज शिवी की चर्चा कर रहे हैं। शिवी महाराज और दधीची मुनि तो दूसरे जीवों के हित के लिए अपने शरीर भी दे दिए, अहंतास्पद, जिसको मैं कहा जाता है, अहंतास्पद परम प्रिय शरीर दान कर दिए। तो को विकल्प, विकल्प का अर्थ विचार, विचार क्या करना है धरा आदि के विषय में, पृथ्वी या सोना चांदी कपड़ा आदि के दान में क्या विचार करना है कि दूं या ना दूं, ये कोई सोचने की बात है। तो जैसे उन महापुरुषों ने दान दिया है, तो मैं उसी तरह से दान दे रहा हूँ। और अभी धन आदि की क्या बात है, यदि यह ब्राह्मण मुझसे मेरा देह मांगे तो मैं सब कुछ दे दूंगा, देह भी दे दूंगा, अभी तो ये बहुत कम मांग रहा है। और फिर अपनी बात का औचित्य बता रहे हैं कि जैरियं बुबुझे ब्रह्मं दैतेन्द्रैरनिवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसित लोकान् न जशोधिगतं भुवि। जिन दैतेंद्रों के द्वारा, जैसे हिरण्यकश्यपु या हिरण्याक्ष आदि के द्वारा यह पृथ्वी भोगी गई और युद्ध में अनिवर्त भी, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाए, यह केवल शुक्राचार्य को संतुष्ट करने के लिए बात कही जा रही है? केवल दैतेंद्र की चर्चा कर रहे हैं बलि महाराज, देवता आदि की नहीं? तो बड़े बड़े दैतेंद्र हुए, दैत्यों में श्रेष्ठ जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष या विरोचन, ये सब हुए, ये युद्ध में पीठ नहीं दिखाए और निवर्त भी, और पृथ्वी को भोगे, पृथ्वी पर बहुत काल तक जिए भोगे। काल उनके लोक को और उनके देह को सबको खा गया। आज जो काल के वश में हो गए, मर गए, नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो अधिगतम प्राप्तम जसह, उन्होंने जो जस कमाया, वीरता कमाया, वह जस आज तक काल नहीं खा सका, जैव का तैव वर्तमान है। तो उसी प्रकार से हे गुरु महाराज, मुझे अपनी कीर्ति चाहिए, न अन्य, मैं अन्य कुछ नहीं चाहता, मैं कीर्ति चाहता हूं। मैं अब कीर्ति नहीं चाहता हूं कि बलि ने इस ब्राह्मण को झूठ बोला, ये ठग लिया, इसको दिया नहीं, ये अब कीर्ति नहीं कमा सकता। भले हमारे पास धन रहे या ना रहे, किसके पास धन रहता है? हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा बलवान हुआ था, हमारा प्रपितामह, आज उसका देह चला गया, लोककार देह भी होता है, उसका देह चला गया, देह से कमाया हुआ लोक भोग भूमि सब तो जेब का तेम रह गया, वो चला गया, तो और कुछ नहीं रहा। वास्तव में मनुष्य घर बनाता है, भोग भोगता है, एक दिन उसका शरीर चला जाता है, घर भी चला जाता है, स्वजन भी छूट जाते हैं, अपना कर्म रह जाता है। तो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनका सब कुछ चला गया, धन भी चला गया, देह भी चला गया, भोग भोगे भोग भी, लोक भी, उनके सामने सब लोग मर भी गए, वो भी उनका भी शरीर चला गया, लेकिन उन्होंने जो जस कमाया है, जस को काल फीका नहीं कर पाता है। इतिहास कहा जाता है कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित है। तो हमें भी कीर्ति ही साध्य है, मैं चाहता हूँ कीर्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपि बलि महाराज परम भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, कीर्ति आदि उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन दैत्यों के समाज में और शुक्राचार्य को संतुष्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमको कीर्ति चाहिए। तो मैं दूंगा ही, मैं दान देने से नहीं मुकर सकता हूँ। और अंत में कहते हैं सुलभा युधि विप्रर से यद निवृत्त स्तनु तेज न तथा तीर्थयाते श्रद्धाया ये धन तेज। हे ब्राह्मण, हे विप्रसि, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, युद्ध में अनिवृत्ता, युद्ध में पीठ न दिखा करके, सामने शत्रु का बाण सह करके शरीर त्यागने वाले इस संसार में लोग सुलभ हैं। सुलभा युधि विप्रसि यह निवृत्त स्तनु तेज, युद्ध में लड़ करके मर जाने वाले, शरीर त्याग देने वाले लोग सुलभ हैं, लेकिन तीर्थ के आने पर, किसी योग्य पात्र के आने पर धन का त्याग करने वाले सुलभ नहीं है इस संसार में। तो मैं ऐसे धन का त्याग करूंगा, दान दूंगा। देह त्याग देना आसान है, लेकिन धन त्याग देना आसान नहीं है। देह त्याग करने वाले तो जगह जगह सुलभ ही हैं, कितने सुलभ हैं, कितने तो आत्महत्या करने के लिए बम लेकर के घुमा करते हैं, हम मरेंगे दूसरों हजारों को मार करके मरेंगे, देह त्यागने के लिए तो ऐसे लोग सुलभ। या सेना में सीमा पर जवान खड़े हैं, ठीक है लड़ाई होगी, देह त्यागने के लिए उद्यत है। देह त्याग करने वाले सब जगह सुलभ हैं, लेकिन धन त्याग करने वाले न तथा सुलभा इत्यर्थ, सुलभ नहीं। देह से भी ज्यादा प्रिय है धन। तो बलि महाराज कहते हैं कि ये दुस्तेज है धन का त्याग करना, देह का त्याग करना आसान है। जैसे उन्होंने देह का त्याग बात किया कि दैतेंद्र, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष आदि देह त्याग दिए, उससे भी ज्यादा कठिन है देह धन त्याग करना, चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी ना जाए, चाम भले निकाल करके ले लो लेकिन हमसे एक पैसा मत लो, क्या करेंगे पैसा है कठिन पर, जीवन चला जाएगा शरीर ही प्रिय चला जाएगा धन रहकर क्या करेगा। तो धन त्याग से तन त्याग से भी धन त्याग कठिन है, और हमको धन त्याग करना है। जब मैं कह दिया कि दूंगा तो दूंगा, यह है बलि महाराज का उन्नत विचार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि धन एक दिन रहेगा नहीं, दो में से एक छूटेगा, या तो धनी रहेगा जीवित और धन ही उसको छोड़कर चला जाएगा। होता है ना, कोई कोई धनी आदमी गरीब हो जाता है, जीवित रहता है धन छोड़ करके चला जाता है, अथवा धन को छोड़ करके वही चला जाएगा मर जाएगा। दोनों में किसी भी हालत में, चाहे वो उसको छोड़े या चाहे वो उसको छोड़े, छोड़ना तो है ही, किसी भी तरह से संग छूटेगा धन आदि से और स्वजन आदि से। तो धन का सदुपयोग होना चाहिए दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित में। ये अवसर पाकर के मैं कह रहा हूं, वास्तव में ये जो भागवत सप्ताह हो रहा है ये हमारी दृष्टि से बलि महाराज का यज्ञ ही हो रहा है, जिसमें भगवान आए हैं दान लेने के लिए। तो जो लोग इस यज्ञ में सहायता कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं किसी प्रकार से, तो ये माना जाएगा कि वे बलि महाराज के साथी हैं और बलि महाराज के साथ इस यज्ञ में मदद कर रहे हैं, इसे भगवान पूजित है। भगवान की कथा में और भगवान में भेद नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण गुण कृष्ण रूप कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। कृष्ण के कथा में और कृष्ण में भेद नहीं है। तो हम लोग बलि महाराज के यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, वो यज्ञ किए हैं और उस यज्ञ में श्री भगवान गए हैं, और श्री भगवान के सामने दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यवहार कुशल और व्यवहार कुशलता की शिक्षा दे रहा है धन आदि बरकरार रखने के लिए, और वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा भक्त भगवान का वह कह रहा है कि ये सब कुछ नाशवान है, धन आदि का त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो यही शोभा है धन के वास्तव में, नहीं तो धन वैसे भी छूटेगा, देह भी छूटेगा, सब कुछ। तो जिन लोगों ने इस यज्ञ में सहायता किया है वास्तव में भगवान के प्रिय पात्र हैं, जथा भी देह से शरीर से वचन से। और मैं सुना हूँ बहुत सुंदर व्यवस्था है, किसी को कोई भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि हमको प्रसाद नहीं मिलेगा, बड़े उदार भाव से प्रसाद देने के लिए भक्त सब कटिबद्ध हैं, 11 काउंटर लगाए हैं, 11 काउंटर जिसमें सीनियर सिटीजन से, मैं तो पहली बार सुना है सीनियर सिटीजनों के लिए अलग काउंटर है, माताजी लोगों के लिए अलग है, दूर जाने वालों के लिए भी एक फास्ट ट्रैक है तो जल्दी चले जाएंगे। पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको प्रसाद नहीं मिलेगा, निश्चित प्रसाद मिलेगा, ऐसी मन में उदारता है, तैयारी है कि प्रसाद दिया जाएगा। इसलिए धैर्य से प्रसाद लेना चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वास्तव में इस यज्ञ में सहायता किया है, उदार भाव से अपना धन अपना शरीर लगाया। जिसमें पूछा कि एक एक काउंटर पर कितने सेवक रहते हैं, तो एक भक्त बता रहे थे कि एक काउंटर पर लगभग 10-12 रहते हैं, कभी भी सामान देने वाले और कोई सप्लाई देने वाले, उनको उनके बर्तन में कोई लाइन में खड़ा कराने वाले, कोई चलाने वाले, ऐसे करने। एक बात किसी भी तरह से कोई सेवा किया है, किसी को ये कहा कि ठीक है आप ऐसे खड़ा होइए ऐसे चलिए, कोई पतल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो हाथ लग रहा है, वचन लग रहा है, आंख लग रही है, शरीर लग रहा है, यह पवित्र होने का बहुत बड़ा उपाय है। वास्तव में बलि महाराज का यज्ञ है जिसमें भगवान पूजित हो रहे हैं, भगवान ने आए हैं जिनकी सब तरह से पूजा की गई, संपूर्ण भूमंडल दे करके भगवान की पूजा की गई, सब कुछ दे दिया गया। बलि महाराज के उद्गार बड़े ही महान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो इसका चिंतन करे अपने जीवन में, इसके विषय में सदा विचार करता रहे, एक एक पद एक एक शब्द श्लोकों के बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे वे कहते हैं कि इस संसार में शरीर त्यागने वाले सुलभ हैं लेकिन धन त्यागने वाले सुलभ नहीं है। कब तीर्थे आयात, तीर्थ का अर्थ होता है योग्य पात्र, योग्य कर्म, जहाँ पर मान लीजिए भगवान की भक्ति का प्रचार हो रहा है और भगवान की भक्ति के प्रचार में सबसे बड़ा प्रचार क्या है, सबसे बड़ा प्रचार है कथा। भगवान गीता में कहते हैं कि जो हमारे द्वारा उपदेश दिए हुए इस गीता को मेरे भक्तों में सुनाएगा, अभिधाष्यति प्रवचन करेगा, उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई नहीं है, न हुआ है न है न होगा, ये भगवान बोल रहे हैं। गीता का प्रवचन करने वाला भगवान जो भगवत गीता में बोले हैं उसको कोई कहेगा, जनता को समझाएगा, तब ना भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, कोई मेरी भक्ति करता है तो जन्म मरण में नहीं पड़ता है, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, इस बात को जो जानता है वो मरने के बाद फिर पुनर्जन्म में नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान इस तरह बोलते हैं। कई कई बातें भगवान बोलते हैं, मैं ही सबका गति हूँ, गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम से प्रभुवम प्रलयस्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं सबका भरण कर रहा हूँ, मैं सबका पोषण कर रहा हूँ, तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मुझे भजो, मेरा कीर्तन करो, मुझे नमस्कार करो, मुझमें मन लगाओ, इतना स्पष्ट प्रवचन वास्तव में कहीं नहीं है ना, भगवान साफ साफ बोलते हैं, फिर भी संसार में देख रहे हैं कि इतने पंथ इतने मत हैं कि कोई किसी को इष्ट मान रहा है, कोई किसी को इष्ट मान रहा है, ये मान रहा है, तो क्या वो भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता उन्हें समझ में नहीं आ रही है। तो भगवद गीता के तथ्य को तत्पर्य को जो समझाता है समाज में बताता है, विशेष करके कृष्ण भक्तों में, तो वह भगवान का बहुत प्रिय है, क्योंकि भक्तों के बीच जब प्रवचन किया जाता है तो भक्तों का ब्रह्म के पथ पर कृष्ण पथ पर बहुत उत्साह बढ़ता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, अक्षय पुण्य है वास्तव में। तो इस प्रकार के श्रवण कीर्तन की जो व्यवस्था करते हैं, जो अपना धन खर्च करते हैं, अपनी बुद्धि खर्च करते हैं, लगाते हैं ऐसे होगा ऐसे किया जाएगा ये किया जाएगा वो किया जाएगा, वो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र हैं, भगवान की अनुकूल दृष्टि उनके प्रति रहेगी। तो बलि महाराज इस प्रकार ये प्रवचन कर रहे हैं, तब शुक्राचार्य ने कह दिया, बलि जो कुछ भी हो लेकिन धन तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो लोक में तुम्हारा अपजस होगा, तुम्हें दुख मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा और लोग आदर नहीं करेंगे। तब बलि महाराज कहते हैं, गुरु महाराज, मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम् जदर्थि कामोपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनर्ब्रह्म विदाम भवादृशाम् ततो बटोरस्य ददामि वांछितम्। गुरु महाराज, आप जैसे महान पुरुष के ब्रह्मविदान भवादृशाम, आप जैसे लोगों को और या इस बटू को, इस तेजस्वी ब्रह्मचारी को दान देने पर यदि किसी करुणावान व्यक्ति के की दुर्गति भी हो, उसे दरिद्रता घेर ले, उसका आदर न हो समाज में, लेकिन फिर भी उसके लिए उस शोभा की बात है। संसार में कहीं जाएगा व्यक्ति, अगर गरीब है हो गया है तो लोग चर्चा करें कैसे गरीब हो गया है। तो तेजस्वी या शुभ आचरण करने वाले ब्राह्मणों को दान दे दिया है, ये बात फैलेगी तो ये कोई अशोभा की बात नहीं है, यही शोभा की बात है। शोभनम, आप जैसे विद्वानों को, ब्राह्मणों को और या अन्य भी कोई मान लीजिए अभावग्रस्त है, गरीब जनता है, उसको चाहिए, और कोई धनी आदमी अगर अपना सब कुछ दे दिया गरीबों की सेवा के लिए, संसार में कहीं जाए तो क्या उसकी दुर्गति लोग मानते हैं, प्रशंसा होती है। जैसे भगवान शिव, भगवान शिव दुनिया में सभी जीवों की रक्षा के लिए समुद्र व्यापी हलाहल विष को अपने करतल पर लेकर के पी गए। एक तो समुद्र को अपने हथेली पर अटवा लेना यही असंभव चीज है, लेकिन भगवान ने अटवा लिया, अटवा करके जहर को फेंका नहीं, सीधे पी गए। पीने के बाद भगवान शिव का गला काला हो गया, यहाँ पर उसको वो निगले नहीं, नीचे नहीं लगा पेट में और उल्टी भी नहीं किए, तो विष इतना भयानक था कि भगवान शिव के गोरे शरीर को यहाँ पर काला कर दिया, तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ऐसे देखा जाए तो एक प्रकार से शरीर भगवान शिव का जल गया, जल का काला हो गया, लेकिन उसके कारण भगवान शिव की बहुत शोभा बढ़ी, बहुत जस फैला। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जनता उनके कंठ पर देखती है कि ओहो, विश्व में सभी जीवों की रक्षा के लिए भगवान ने ये विष पिया था, जस बढ़ता है और प्रशंसा होती है शिव जी की। तो कोई मनस्वी व्यक्ति है, धैर्यवान है और गरीबों के लिए दान दिया या किसी श्रेष्ठ काम के लिए उसने दान दिया और किसी कारण से उसके पास धन का अभाव हो गया, नहीं कुछ रहा, तो फिर भी उसकी शोभा ही बढ़ती है, उसका जस गाया जाता है। अतः अस्य बटो हो वांछितम ददामी, अतः सब तरह से विचार करके मैंने आपके बातों का एक एक भाव समझा है, सब विचार करके मैं इसी निर्णय पर हूँ कि इस ब्रह्मचारी की इच्छा को मैं पूरा करूँगा ही, चाहे जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहे। और फिर कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो अगर ये विष्णु हैं तब तो और दूंगा दूंगा दूंगा, कभी मान नहीं सकता, देना है ही। क्यों? कि जजंत यज्ञ कर्तभिर जमा देता भवंत आमना विधान कोविदा, आप जैसे विद्वान पुरुष जो वेदों को जानते हैं, तो वेदों को पढ़ करके इन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं ना, भगवान विष्णु के लिए आप लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञों में इनको आहुति देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आप यहाँ आइए, हमारा हवन लीजिए, हमारा भोग लीजिए, जब लोग मंत्रों से बुलाते हैं भगवान को यज्ञ कर करके और भगवान आते नहीं हैं, वही भगवान आज आँख के सामने मेरे उपस्थित हुए हैं और हमसे खुल करके मांग रहे हैं और मैं न दूँ, आप जरा विचार कीजिए। वेदों में यही लिखा गया है ना कि इनकी पूजा करनी चाहिए, भवंत आमना है विधान विधान को विदा, वेद विधान को जानने वाले आप लोग यज्ञ करते हैं और वही भगवान डायरेक्ट आकर के हमसे मांग रहे हैं, यदि मैं नहीं देता हूं तो मेरे जैसा अभागा, मेरे जैसा नीच कौन होगा इस संसार में और मूर्ख, मैं इनको निश्चित दूंगा। और आप कहे कि सब कुछ ले लेंगे, तुमको बांधेंगे, ये करेंगे, तो हाँ, सब कुछ देने के बाद भी ये भगवान हमारी प्रशंसा करें, हमको वर दें या हमको अपना शत्रु समझें, हमको तंग करें किसी भी तरह से, इनकी जो इच्छा हो करें, पर मैं इनकी इच्छा के अनुसार भूमि दान करूँगा, दास्यामी अमुष्मे क्षितिमि पितामुने, और यदि मुझको ये बांधेंगे तो मैं क्या करूँगा, यद्यप्यसो अधर्म मम बधनीय तना गसम, मैं अपराध नहीं किया हूँ, मैं इनको दान दूंगा और उसके बाद भी यदि इसको बांधेंगे फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा, इनकी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे भय से ब्राह्मण बन करके आए हैं। ये भगवान से डायरेक्ट ही कह रहे हैं एक प्रकार से, अगर हमको बांधेंगे मारेंगे तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इनको गाली तक नहीं दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे डर से ब्राह्मण बनकर आया है तो हम अब क्या उसके साथ कुछ कहें। भीतम ब्रह्म तनु, देखिए साक्षात ईश्वर हैं लेकिन हमारे भय से या लोभ से, जैसे भी ब्राह्मण बनकर के आए हैं कि ब्राह्मण का भक्त है, ब्राह्मण का आदर करता है इसलिए देगा, अरे ऐसे डायरेक्ट आए होते तब भी मैं दे दिया होता, इनके कहने का आशय ये है, लेकिन हमारे भय से ब्राह्मण बन करके आए हैं तो हमारे भय से जो व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है वो हमको मारे चाहे पीटे हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। अथवा हो सकता है कि ये अपना जोश न छोड़े, सबसे बड़े वीर हैं, ये हमको मारे, अथवा ये भी हो सकता है कि हमसे हार करके सदा के लिए सो जाए, ये इसे मतलब हमारे हृदय में सो जाए, ये अर्थ है, इनको मैं सदा के लिए हृदय में बसा लूंगा, इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा सब कुछ ले लेंगे लेकिन इनको मैं ले लूंगा, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको अपने हृदय में सदा के लिए बसा लूंगा, और इनके अलावा कौन है हमारा दुनिया में, कोई नहीं है, यही प्रभु हमारे सब कुछ। इस प्रकार श्री बलि महाराज गुरु की बात की अवहेलना करके भगवान को सब कुछ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, जल देने के लिए तैयार हुए, जब उन्होंने भूमि दान कर दिया तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान अपने रूप को बढ़ाए विश्व को नापने के लिए। तो कल इसकी कथा होगी कि भगवान किस तरह भूमि नाप रहे हैं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
बैठे रहे, लाइक करें, कृपया।